नमस्कार भारत, 17 जून सोमवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। 17वीं लोकसभा का आज से पहला सत्र होगा शुरू। कौन से विधेयक हो सकते हैं पेश?
एक है ट्रिपल तलाक बिल, जो हमारे मुस्लिम बहनों के लिए किया गया था कानून। उसके बाद है आपके आधार बिल है, जो मतलब आधार आपको इस्तेमाल करना हो वॉलंटरीली आप दे सकते हैं।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों के बीच आज होगी बैठक।
दोनों ने अपने सुर में नरमी दिखाई, राज्य सरकार ने भी और हड़ताली डॉक्टरों ने भी, तो इससे लगता है कि आज की बैठक के बाद हड़ताल टूट जाएगी।
और विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को लगातार 7वीं बार दी मात।
ये साबित हो गया कि दोनों टीमों में बहुत फर्क है और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे रह गया है। भारत ने जो तरक्की की है ओवरऑल वो दिखती है।
होगी उसद की डायरी भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सर्वप्रिया सांगवान से। अमेरिका की सेना का कहना है कि पिछले सप्ताह ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों पर हमले के दौरान ईरानी सेना बलों ने एक अमेरिकी ड्रोन को गिराने की कोशिश की थी। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि एक ईरानी मिसाइल को रीपर ड्रोन पर दागा गया जब ड्रोन घटनास्थल पर पहुंचा, हालांकि मिसाइल चूक गई। ईरान ने अमेरिका के इन आरोपों से साफ इनकार किया है कि 2 टैंकरों पर हुए हमले के लिए ईरान जिम्मेदार था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में नेविगेशन सुनिश्चित करवाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सूडान के मिलिट्री जनरल मोहम्मद हमदान डागलो ने कहा है कि जो लोग प्रदर्शनकारियों की मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। इसी महीने की शुरुआत में सैनिक बलों पर दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत का आरोप लगा है। हालांकि टीवी पर दिए एक भाषण में जनरल डागलो ने कहा है कि सैनिकों ने कोई गलत काम नहीं किया। जनरल डागलो सत्ताधारी सैन्य परिषद में नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इस घटना की स्वतंत्र जांच हो। इससे पहले सूडान में सत्ता से बाहर किए गए उमर अल बशीर पर भी आरोप तय किए गए। इन आरोपों पर भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के वकील ने कहा हमारे दफ्तर के सभी संबंधित नियम अभियुक्त पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को दे दिए गए हैं। उन पर गैर कानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा रखने का आरोप लगा है और साथ ही गैर कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी। ये बता रहे थे सूडान के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के वकील। अल बशीर पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को मरवाने का भी आरोप है। निसान कंपनी के पूर्व चेयरमैन कार्लोस गोसन की पत्नी कैरोल गोसन राष्ट्रपति ट्रंप से अपील कर रही हैं कि वे उनके पति की कानूनी लड़ाई को लेकर जापान पर दबाव बनाएं। कार्लोस गोसन को नवंबर में टोक्यो में गिरफ्तार किया गया था और उन पर निसान रेनो गठबंधन के प्रभारी रहने के वक्त वित्तीय अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। उनकी पत्नी कैरोल का दावा है कि ये गिरफ्तारी निसान अधिकारियों की एक साजिश की वजह से हुई, जो नहीं चाहते थे कि निसान और रेनो कंपनियों का गठबंधन मजबूत हो। उन्हें उम्मीद है कि अमरीकी राष्ट्रपति जब इस महीने के अंत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे। वे कहती हैं
The world leaders are going to be meeting at the G20 at the end of the month. I'd like President Trump.
दुनिया भर के बड़े नेता इस महीने के आखिर में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मैं चाहती हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप जापान के प्रधानमंत्री से बात करें कि मेरे पति सही स्थिति में हों, उन्हें निष्पक्ष ट्रायल मिले और मुझे उनसे बात करने दी जाए, और साथ ही इस बात का सम्मान भी रखा जाए कि जब तक वे गुनहगार साबित ना हो जाएं वे तब तक निर्दोष हैं। निसान कंपनी के पूर्व चेयरमैन कार्लोस गोसन की पत्नी कैरोल गोसन बात कर रही थी। जर्मनी में मुख्य सत्ताधारी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स को एक मेयर चुनाव में घोर दक्षिणपंथी पार्टी और प्रवासी विरोधी पार्टी AfD से चुनौती मिली है। शुरुआती नतीजों से पता चला है कि सेंटर राइट उम्मीदवार ऑक्टेवियन उर्सू ने गोयरिड्स शहर में 55% से अधिक वोट हासिल किए। कोई भी AfD उम्मीदवार कभी भी मेयर का चुनाव नहीं जीता है। गोयलिट्स शहर में AfD को काफी समर्थन मिला, जहां रोजगार के अवसरों की कमी की वजह से काफी युवा लोग पलायन कर रहे हैं। हांगकांग में विवादास्पद प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद अब भी सड़कों पर हजारों लोग हैं। कई प्रदर्शनकारी रात भर डेरा डाले रहे, जबकि अन्य को बैरिकेड लगाते हुए देखा गया, लेकिन खबर है कि माहौल अब बेहतर है, जो कि पिछले हफ्ते काफी तनावपूर्ण रहा। BBC समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। आज से 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 303 लोकसभा सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार अपने कार्यकाल के इस पहले सत्र में कई अहम विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इसी सत्र के दौरान 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट भी पेश करेंगी। सुनिए बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी की ये रिपोर्ट।
17वीं लोकसभा के चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी और सांसदों के विचार और पारित कराने के लिए कई अहम बिल रखे जाएंगे। राज्यसभा में कुल 33 बिल लटके हुए हैं जो 16वीं लोकसभा के विघटन से पहले पारित नहीं कराए जा सके थे, लिहाजा इस सत्र में इन बिलों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। नरेंद्र मोदी की नई सरकार बेहद चर्चित रहे 3 तलाक विधेयक को एक बार फिर संसद से पारित कराने की कोशिश करेगी। अपने पिछले कार्यकाल में वो इस बिल को लोकसभा से पारित कराने में तो कामयाब रही थी, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी और वहां बिल पास नहीं हो सका था, जिसके बाद सरकार को 3 तलाक को लेकर अध्यादेश लाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नए बिल में विपक्ष की बातों को ध्यान में रखा जाएगा।
मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति देने के लिए इस बार बिल लाया जाएगा, जो अध्यादेश पहले निकला है और उसमें जो भी विपक्षों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, आपत्तियां व्यक्त की, उसका भी संज्ञान लिया।
इसके अलावा संसद के इस सत्र में द एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2018, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, 125वां संविधान संशोधन बिल 2019 जैसे कई विधेयक संसद के सामने रखे जाएंगे। इसमें से सरकार जिन बिलों को सबसे अहम मान रही है वो है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019, जिसके तहत जम्मू, सांबा और कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव वालों को 3% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले ये आरक्षण सिर्फ LOC से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को ही मिलता था। सरकार के मुताबिक इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 435 गांवों में रहने वाले 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करवाने से जुड़ा विधेयक भी सदन के सामने रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया,
जैसे पहले होता था कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट एक यूनिट समझकर उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार। हमने अध्यादेश निकाला था लेकिन चूंकि सेशन खत्म हुआ तो इसलिए अभी उसको बिल के रूप में नए सदन के सामने लाया जाएगा।
लोकसभा का सत्र आज से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा, वहीं राज्यसभा का सत्र 20 जून से 26 जुलाई तक होगा। 17 और 18 जून को लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को सुबह 11 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। वहीं 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 5 जुलाई को केंद्रीय बजट भी पेश किया जाएगा। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
इस बार की तरह ही पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लोकसभा में बहुमत में थी, लेकिन वो राज्यसभा से कई विधेयक पास नहीं करा पाई थी। इसके कारण करीब 30 विधेयक लंबित रह गए थे। इस बार सरकार के सामने राज्यसभा में किस तरह की चुनौतियां होंगी, यही पूछा हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी ने वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से।
बिल्कुल, अभी भी वही चुनौतियां हैं क्योंकि वहां पे जो ये जो संख्या की बात है वहां पे कोई बदलाव नहीं आया है, केवल लोकसभा में बहुमत मिला है लेकिन राज्यसभा वैसे ही है। और इस साल भर के जितने राज्यसभा चुनाव होंगे और अगले साल कम से कम एक साल लगेगा, यानी 2020 तक की उनको मेजोरिटी वहां मिलने की संभावना है। तब तक के लिए इनको ऑपोजिशन से ही नेगोशिएट करना पड़ेगा ये बड़े बड़े कानून पास करने के लिए।
इस सत्र में कौन कौन से अहम बिल पेश किए जाने की तैयारी है?
देखिए, बिल्कुल 4 ऐसे कानून है जिसको राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के माध्यम से ही कंटिन्यू हो रहा है। एक है 3 तलाक बिल, जो हमारे मुस्लिम बहनों के लिए किया गया था कानून। उसके बाद है आपके आधार बिल है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर आधार आपको इस्तेमाल करना हो वॉलंटरीली आप दे सकते हैं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए या मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए। इसके लिए कानून जरूरत थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना कानून आप इस आधार को यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन भी है, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून है। तीसरा कानून है आरक्षण को लेकर है, ये मतलब दो आरक्षण है, एक यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स में, और चौथा बिल जो आरक्षण बिल है वो है जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पे इंडिया पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे रहने लोगों के लिए आरक्षण है। ये चार वैसे तो बड़े इंपॉर्टेंट बिल है, इसके अलावा और 30 बिल है जो काफी समय से पेंडिंग है, उसमें नेशनल मेडिकल कमीशन की बात है, ऐसे कई कानून है जो मतलब लोकसभा में पास हो चुके हैं, राज्यसभा में पेंडिंग है।
इस सत्र में बजट भी पेश किया जाना है, तो बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें लगाई जा सकती हैं?
आर्थिक अवस्था में ऐसा लग रहा है कि एकदम मांदा पड़ा है, स्लगिश ग्रोथ है, तो आपके ट्रेड और बिजनेस चाहते हैं कि सरकार कुछ उनके लिए ऐसा कदम उठाए जिससे उनको एक इम्पेटस मिले, उनको इंसेंटिव मिले। और दूसरी चीज है टैक्स को लेकर कि टैक्स में क्या कोई रिफॉर्म्स आएगा जिसमें मिडिल क्लास को और अपने हाथ में पैसा ज्यादा आएगा ताकि वो खर्चा ज्यादा कर सके। अगर वो ज्यादा खर्चा कर सकेंगे तो तभी तो कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ सकती है। अभी हम जो डेटा आया है उसमें पैसेंजर गाड़ियों की डिमांड भी गिर गई है इस बार। इसका मतलब वर्चुअली एक स्टैंड स्टिल में है बिजनेस में, जिसको बजट के माध्यम से सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह इकोनॉमी को एक बड़ी किक स्टार्ट मिलेगी।
राज्यसभा में एनडीए के आगे क्या होंगी चुनौतियां, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल अभी भी जारी है, जिसके आज समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। कल कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जनरल बॉडी मीटिंग की, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म करना चाहते हैं। इस बारे में गुरप्रीत सैनी ने विस्तार से कोलकाता में स्थानीय पत्रकार पीएम तिवारी से बात की।
आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हड़ताली जूनियर डॉक्टरों की बैठक होने वाली है राज्य सचिवालय में शाम 3 बजे। काफी उहापोह के बाद अब कुछ उम्मीद नजर आने लगी है बीते 7 दिनों से जारी हड़ताल टूटने की। इस बैठक के बाद उम्मीद है कि हड़ताल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने शनिवार को ही कह दिया था कि उन्होंने डॉक्टरों की तमाम मांगे मान ली हैं और उन्होंने डॉक्टरों को न्योता भी दिया था शनिवार को आने का, लेकिन बावजूद उसके डॉक्टरों ने आने से इनकार कर दिया। और रविवार को डॉक्टरों के जो ज्वाइंट फोरम है आंदोलन करने वालों का, तो उनकी बैठक हुई लगभग 2.5 घंटे, तो उसमें पहले उन्होंने कहा कि हम बैठक में जाएंगे जहां ममता बनर्जी बुलाएंगी, लेकिन ये खुले में होनी चाहिए और इसमें मीडिया की भी मौजूदगी होनी चाहिए। फिर थोड़ा और सुर नरम किया बाद में देर रात रविवार को उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसकी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो इस पे ममता बनर्जी ने भी कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने आज बैठक के लिए उनको न्योता दे दिया, तो शाम 3 बजे ये बैठक को।
तो बातचीत पर जो सहमति बनती दिख रही है, तो क्या इसे लग रहा है कि जो ये गतिरोध इतने दिनों से चला आ रहा है ये खत्म हो जाएगा और मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है?
हाँ, ये उम्मीद तो अब संभावना इसकी प्रबल हो गई है। कल जो दोनों ने अपने सुर में नरमी दिखाई, राज्य सरकार ने भी और हड़ताली डॉक्टरों ने भी, तो इससे लगता है कि आज की बैठक के बाद हड़ताल टूट जाएगी और गतिरोध खत्म हो जाएगा। और बैठक में जो सरकारी 14 मेडिकल कॉलेज है राज्य के, उसके 2-2 प्रतिनिधि रहेंगे, यानी कुल 28 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। और राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और शिक्षा तकनीकी चिकित्सा शिक्षा निदेशक भी मौजूद रहेंगे बैठक में। तो लगता है कि कोई समाधान सूत्र निकल आएगा और मामला पूरा जीत और ईगो पर अड़ा हुआ है। बाकी तमाम चीजें तो राज्य सरकार ने मान ली है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक समिति 2 सप्ताह में रिपोर्ट देगी कि कहां कैसी सुरक्षा की जरूरत है। तो लगता है कि अब ये गतिरोध टूट जाएगा।
ये थे कोलकाता के स्थानीय पत्रकार पीएम तिवारी। एक और जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर मुलाकात के लिए राजी हो गए हैं, वहीं आज ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने डॉक्टरों के समर्थन में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया है। इस कारण देश भर के अस्पतालों में OPD सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस बारे में BBC संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने IMA के डॉक्टर्स नेशनल बॉडी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रंजन शर्मा से बात की।
हड़ताल देशव्यापी हड़ताल है और ऑल ओवर द कंट्री 1700 ब्रांचेज में होगी। और मेन मांग है सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस और ITC और CRPC की धाराओं में बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो फैसिलिटीज है उनको और ऑगमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, वर्कलोड सबसे ज्यादा वर्कलोड तो सरकारी अस्पतालों पे आता है, एक एक डॉक्टर 12-12, 13-13, 14-14 घंटे की ड्यूटी करता है मिनिमम, और अपनी सेवा में कभी कोताही नहीं बरतना चाहता, परंतु इतने ओवर वर्किंग में मरीज की भी सुविधा को देखना चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा।
इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मरीजों पर पड़ेगा, आपने उनके बारे में क्या सोचा है?
मैडम, अगर एक डॉक्टर सुरक्षित रहेगा इलाज तो तभी कर पाएगा ना। आपने बंगाल का इंसिडेंट देखा, एक डॉक्टर पे जानलेवा हमला हुआ, जो ये इंसिडेंट्स बार बार बढ़ते जा रहे हैं, तो समाज के लिए और डॉक्टर के लिए, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, ये ठीक नहीं। हमारी संवेदना है मरीजों के साथ, परंतु हम इमरजेंसी सर्विसेज चला रहे हैं और हम इतनी देर से इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस करके हमारे कोई भी अपना सुरक्षित जीवन और सुरक्षा एक हमारा मौलिक अधिकार है एज ए सिटीजन।
लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो डॉक्टर्स की मांगे मानने को तैयार हैं।
7 दिन बाद अब जो डॉक्टर हमारा भाई इंजर्ड हुआ है बंगाल में, वो कहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आएगा? वो इस कॉन्फिडेंस को खो चुका है, उसको बहुत काउंसलिंग लगेगी वापस आने के लिए। और आप वो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी मरीज को कोई दिक्कत है, कुछ है, सारे फोरम है, कंज्यूमर कोर्ट है, पुलिस कंप्लेंट है, कंप्लेंट टू द डीसी ऑफिस है, सीएमओ ऑफिस है। वायलेंस इज नेवर एन आंसर टू एनीथिंग। हम इतने 5 साल से 6 साल से वायलेंस की डिमांड को लेकर लगे हुए हैं, सबसे लंबित डिमांड है, हमें भी गलत लगता है, परंतु इससे ज्यादा पीसफुल वे हमें लगा नहीं कि हम अपनी बात भी कह दें और डैमेज भी ना हो। इमरजेंसी सर्विसेज से काफी हद तक स्वास्थ्य सेवाएं की इमरजेंसी हो जाती है, जो स्वास्थ्य प्रभावित होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लान सर्जरीज एंड ओपीडी होती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी कह चुके हैं कि राज्यों से कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए खास कानून बनाया जाए, इसके बावजूद भी फिर आप लोग हड़ताल जारी रखने का क्यों सोच रहे हैं?
माननीय मंत्री जी की बात को मिले भी थे, बहुत अच्छी मीटिंग भी थी, हमने सिर्फ एक रिटर्न आश्वासन मांगा है कि हमारे को आश्वस्त कर दीजिए कि इसका हम कर रहे हैं, जो कि हमारी मांग बिल्कुल सही है। और पहले इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में भी डिसाइड हो गया था 2 साल पहले, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया
जी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि डॉक्टर्स की मांगे मान लेंगे, उस पर आपका क्या कहना है?
हम बहुत अच्छी बात है, बातचीत हो रही है, तो उसके माहौल में बात होगी।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आज देशव्यापी हड़ताल।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और विश्व कप में कल भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत बड़ी ही आसानी से पाकिस्तान को 89 रनों से हरा दिया। मैच की पूरी रिपोर्ट और विश्लेषण सुने आज के खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। 8 बार के ओलंपिक और 1 बार के विश्व चैंपियन भारत ने बीते शनिवार को भुवनेश्वर में समाप्त हुए FIH पुरुष हॉकी सीरीज फाइनल्स के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराया और खिताबी जीत भी हासिल की। इसके साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक क्वालिफायर्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की जीत में ड्रेक फ्लिकर, हरमनप्रीत सिंह और वरुण कुमार ने 2-2 और विवेक सागर प्रसाद ने 1 गोल किया। और अब समीक्षा। जिसे समझ रहे थे महामुकाबला, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा और अभी भी रंग फीका ही है विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का।
हाँ, आपने ठीक कहा, ये तो हर बार होता है कि जब भी भारत पाकिस्तान से खेलता है सबको लगता है कि यह एक ही मैच है, पर आज ये साबित हो गया कि दोनों टीमों में बहुत फर्क है और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे रह गया है। भारत ने जो तरक्की की है ओवरऑल वो दिखती है उनके गेम में। बहुत टाइम लगेगा पाकिस्तान को इस हार से उभर के आने में, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इन टीमों का पतन, श्रीलंका जैसी टीम इतना खराब क्रिकेट खेल रही है, तो ओवरऑल गेम के लिए अच्छा नहीं है।
ये कहना है क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली का, जो इस बात से बेहद निराश है कि जहां दुनिया भर के निगाहें कल भारत पाक मुकाबले पर टिकी थी, उसे भारत ने बेहद आसानी से डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 89 रन से जीत लिया। कल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत का जमकर लुत्फ उठाते हुए भारत ने रोहित शर्मा के 140 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 336 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान को 40 ओवर में 302 रन बनाने की चुनौती मिली, लेकिन वो 6 विकेट खोकर 212 रन बना सका। एक समय तो उसके 5 विकेट केवल 129 रन पर गिर चुके थे और यहीं हार की घंटी भी बज चुकी थी। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं,
Batsman made a good start. I think Babar and Fakhar, they played really well. But unfortunately, we lose so many wickets. That's why we lose today. And obviously, जब हारते हैं थोड़ा सा morally जो है वो टीम गिरती है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि हमें गिरने की जरूरत नहीं है। अभी हैं हमारे पास 4 matches, you never know, open pool है, कुछ भी हो सकता है।
अब कुछ भी जब होगा तब होगा। अब तो पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि उनके पत्रकार खुद रोहित शर्मा से पूछ रहे हैं कि इसका हल क्या हो।
Right, as a Pakistan journalist, I will congratulate you for your beautiful 100.
Thank you.
And you have captured all the match. Really, we are very happy that we have seen today a beautiful inning.
Thank you.
I will ask about you for the Pakistan team is under crisis for a long time. As a colleague, what would you suggest to Pakistan batsmen how they can come out from this crisis?
अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा। अभी तो अभी क्या बताऊंगा।
खैर, भारत पाक मुकाबला हो तो क्या ना हो जाए। भारत के कप्तान विराट कोहली ने 77 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो पेवेलियन लौट गए, वो भी बिना अंपायर के इशारे को देखे। विजय लोकपल्ली कहते हैं,
हाँ दमदार पारी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त जैसे खेलने चाहिए थे, दूसरे को स्ट्राइक भी दिया, एक गति बना के रखी इनिंग्स की, बाउंड्रीज जिस ढंग से शॉट्स लगा रहे थे। पर ये मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने वो जो निर्णय लिया कि अंपायर के सिग्नल से पहले ही आप चले गए और वहां जाके उनको बाहर जाके मालूम पड़ा कि भाई आउट नहीं थे। हालांकि बैट्समैन जब शॉट खेलता है तो उसको मालूम हो जाता है कि बॉल लगी है बैट में।
भला हो भारत जीत गया, वरना विराट कोहली सफाई देते देते परेशान हो जाते। लेकिन रोहित शर्मा खुश हैं कि उनका बल्ला विश्व कप में बोल रहा है। कल इस विश्व कप में उन्होंने दूसरा शतक जमाया।
जब भी आप ये टी शर्ट पहन के खेलते हो तो आपको अपना ए गेम आगे लाना पड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है। 4 साल से वेट करते हैं वर्ल्ड कप का, तो जब भी मौका मिलता है तो कोशिश हम लोग यही करते हैं कि आपका जो भी बेस्ट गेम है वो सामने लाने की कोशिश करते।
अब जो बात रोहित शर्मा में है वो दूसरी टीमों में क्यों नहीं। पाकिस्तान को छोड़िए, श्रीलंका, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। विजय लोकपल्ली को भी लगता है अभी रंग फीका है।
इंग्लैंड में ये माना जा रहा था कि बेस्ट वर्ल्ड कप हमको देखने को मिलेगा। उन्होंने फॉर्मेट चेंज किया, 10 टीमें हैं, टीमें कम रखी हैं ताकि कंपटीशन अच्छा रहे। पर अभी तक ये देखने को मिला है कि एक दो मैच छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई हमने कॉम्पिटेटिव मैच देखा है।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर्वप्रिया सांगवान।
शाहिद, जैसे कि आपने खबर भी बताई कि आज 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया इस बार लिख रहा है कि सत्र तो शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर अभी तक भी तय नहीं है कि वे कहाँ हैं और क्या वो सत्र को उसमें मौजूद रहेंगे कि नहीं। और जो ऑल पार्टी मीटिंग होती है सत्र के शुरू होने से पहले, उस शाम को सिर्फ दो ही कांग्रेस लीडर वहाँ प्रेजेंट थे, मौजूद थे, अधीर रंजन चौधरी और के सुरेश। और इसी बात पर जो सत्र शुरू होने वाला है, हिंदुस्तान टाइम्स अपना एक एडिटोरियल लिख रहे हैं, उसमें जो बताया गया है कि इतना जो बड़ा मैंडेट मिला है बीजेपी को, एनडीए को, तो वो उसको दो तरीके से उसे इस्तेमाल कर सकते सत्र में। या तो वो सारा अपना एजेंडा ओपोजिशन पर पूरे तरह से लागू कर दे, उनकी कोई बात ना सुने, या फिर वो एक तरीके से एक कंसेंसस बनाए लोगों के बीच, चाहे ओपोजिशन में नहीं लेकिन लोगों के बीच। जैसे कि कुछ ऐसे मुद्दे जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल है या पोल्यूशन का मुद्दा है। दूसरी बात, ये एडिटोरियल में ये भी लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी इस जो सेकंड टर्म उन्हें मिला, इस बार वो इकोनॉमिक को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, उसको लेकर अब वो कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। इस बार उन्हें खुद से कुछ बात करनी पड़ेगी, खुद से कुछ नतीजा देना पड़ेगा।
इसी के लिए दो संसदीय समिति भी बना दी थी उन्होंने।
जी हाँ,
तुरंत
वो 2014 में भी बनाई गई थी और इस बार भी बनाई गई हैं। इस बार एक और खबर है, दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पहली बार 50 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने स्विस बैंक में पैसा जमा कराया था, ये 50 भारतीय हैं, पहले नाम आए थे लेकिन वो कोर्ट में थे, इस बार पूरे पूरे नाम रखे गए हैं। और ये स्विट्जरलैंड में जो जिन लोगों ने धन जमा कराया, जिन भारतीयों ने, उन्होंने अपील की थी कि उनके नाम सार्वजनिक ना किए जाएं, तो बैंक ने उनसे कहा था कि पहले आप अपने पैसों के स्रोत दे दीजिए, दस्तावेज दे दीजिए उसको लेकर, और जब उन्होंने नहीं दिए वो दस्तावेज तो ये नाम सार्वजनिक किए गए हैं।
इसके अलावा मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे देख रहा हूँ कि सरप्रिया के उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग ऑर्डिनेंस ऑन मंदिर, मतलब राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाना चाहिए। ये एक बार इन्होंने फिर कहा है, कल गए हुए थे अयोध्या
जी
पूजा अर्चना के लिए।
अब मैं अमर उजाला की एक खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पढ़ रही हूँ, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से ईंधन का BS6 मानक लागू हो रहा है, यानी जो BS4 के मानक के जो वाहन है, ना उनकी बिक्री होगी ना पंजीकरण होगा। उसको लेकर जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, उनसे अमर उजाला ने एक इंटरव्यू किया है, जिसपे उन्होंने बताया है कि वो अब कार्बन उत्सर्जन की कमी लाना इसका उद्देश्य है, और लेकिन उद्योग जगत की बात भी सुनी जाएगी।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रिया। श्रोताओं, विश्व कप में पाकिस्तान लगातार 7वीं बार भारत से हार चुका है, लेकिन वसातुल्ला खां का मानना है कि पाकिस्तान का भी टाइम आएगा। आइए सुनते हैं पाकिस्तान से वसातुल्ला खां की डायरी।
भारत को 89 रन से मैच जीतने पे बधाई, रोहित शर्मा को 140 रन की बधाई। वैसे जिस बल्लेबाज ने वनडे इंटरनेशनल में 3 डबल सेंचुरियां खड़काई हों, उसके आगे 140 रन की पारी क्या बेचती है। दुख बस इतना है कि जब एक बार बारिश शुरू हो ही गई थी तो घंटा दो घंटे और बरस जाती तो उसका क्या बिगड़ जाता, मगर जब टाइम ख़राब चल रहा हो तो सीधा भी उल्टा ही चलता है। जब पाकिस्तान ने 35 ओवर्स खेल लिए, उसके बाद थोड़ी बारिश का नुकसान ये हुआ कि डकवर्थ लुइस फार्मूले के अनुसार मैच 50 ओवर से घटा के 40 ओवर्स का कर दिया गया, यानी अगली 30 गेंदों में पाकिस्तान को 130 रन्स बनाने थे। इससे ज़्यादा बुरा मजाक और क्या हो सकता है। अब इस मजाक की भरपाई तभी हो पाएगी कि पाकिस्तान, जिसने अब तक सिर्फ 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं, अगले 4 मैचों में एक भी ना हारे। इस वक्त ये काम कोह काफ में देव की कैद में तड़पती राजकुमारी को आज़ाद कराने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। भारत का अगला मैच अफगानिस्तान से और पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से है। अब मैं और क्या कहूँ, पर दिल को आखिरी तसल्ली ये है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इसी सिचुएशन में था, लेकिन आखिरी 4 मैच लगातार जीत के वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पहुँच गया। लेकिन ना तो ये 1992 है और ना ही कप्तान सरफराज अहमद इमरान खान है। इमरान खान, जिन्होंने चुनाव से पहले मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी की थी, इन्हीं इमरान खान ने मैच शुरू होने से पहले सरफराज को पैगाम भेजा था कि टॉस जीत जाओ तो बैटिंग पहले करना, स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर्स को पहले खिलाना और रेलू कट्टू टाइप खिलाड़ियों को पीछे रखना, क्योंकि वो इस मैच का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मगर सरफराज ने वो सब किया जो मना किया गया था, टॉस जीत के बैटिंग की बजाय बॉलिंग ले ली और फिर बैटिंग ऑर्डर भी अपनी मर्जी का ही रखा। गेंदबाजों ने जी भर के शॉर्ट पिच गेंदें कराईं, शायद वो रोहित शर्मा का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, जिन्हें शॉर्ट पिच गेंदें खेलना बहुत अच्छा लगता है। वैसे इमरान खान का मशवरा भी क्या कर लेता, आज तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से एक मैच भी नहीं जीत सका, 1992 में भी नहीं जब पाकिस्तान कप जीत के घर ले आया था। पर कोई बात नहीं, आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा।
वसातुल्ला खां की डायरी कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका की सेना का कहना है कि पिछले सप्ताह ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकरों पर हमले के दौरान ईरानी सेनाबलों ने एक अमरीकी ड्रोन को गिराने की कोशिश की थी। सूडान के मिलिट्री जनरल मोहम्मद हमदान डागलो ने कहा है कि जो लोग प्रदर्शनकारियों की मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। निसान कंपनी के पूर्व चेयरमैन कार्लोस गोसन की पत्नी कैरोल गोसन राष्ट्रपति ट्रंप से अपील कर रही हैं कि वे उनके पति की कानूनी लड़ाई को लेकर जापान पर दबाव बनाएं। जर्मनी में मुख्य सत्ताधारी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स को एक मेयर चुनाव में घोर दक्षिणपंथी पार्टी और प्रवासी विरोधी पार्टी एफडी से चुनौती मिली है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।